मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय की घोषणा मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज बात करने के लिए मेरे पास दूसरी काफ़ी खबरें हैं। यदि समय मिल पाया तो फिर मैं उस समय कुछ बातें आपसे मुख्य विषय के बारे में बताकर करूंगा। आइए कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री आप पार्टी के हैं, भगवंत मान बन गए हैं। आप पार्टी ने पहली बार पंजाब में सरकार का गठन किया है, जो अभी दिल्ली में भी सरकार जिसने बनाई हुई है। और डेफिनेटली कांग्रेस बुरी तरह से हारी, अकाली दल को भी सफलता नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी को भी सफलता नहीं मिली। और आप पार्टी की जो यह सफलता है वह लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ी सफलता मिली है। यहां एक बात मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहूंगा। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं कई बार कह चुका हूं कि हम किसी भी पार्टी के आलोचक हो सकते हैं, समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक सिविल सर्वेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी दृष्टि बहुत तटस्थ होनी चाहिए। आप पार्टी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट के रूप में आप पाएंगे कि जो आप पार्टी है उसने दिल्ली में कुछ बहुत ही मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित काम किए हैं। जैसे उसने मेडिकल के क्षेत्र में जो काम किया, प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तो उसे एक मॉडल के रूप में लिया जा रहा है। और केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी दिल्ली के इस मॉडल को अपनाया जा रहा है, इस पर चर्चा की जा रही है, इस पर रिसर्च हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पंजाब पर पड़ा हो क्योंकि पंजाब के लोगों ने महसूस किया हो कि नहीं, जो मूलभूत बातें हैं उन पर इनका ज्यादा फोकस होता है बजाय दूसरी बातों के। और आप देखिए कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को जो इतनी बड़ी सफलता मिली है उसके बारे में जो विश्लेषण आपको पढ़ने को मिलेंगे उसमें यही है कि उसने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है। लोगों को उसने आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की शुरुआत की है, लोगों के यहाँ रसोई गैस पहुंचा दी है। अभी खासकर कोरोना के पीरियड में लोगों तक अनाज पहुंचाया गया, किसानों के खाते में रुपए डाले गए, तो ये सब सीधे सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आप पार्टी ने ऐसा किया तो लोकतंत्र में आया हुआ एक अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है। मुझे कुछ मेल मिले हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सर, आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जाति का जो प्रभाव है वो लोकतंत्र में कम हुआ है। और उन्होंने ये बात लिखी कि यहां के जो नेता थे जब चुनाव भाषण देते थे तो उसमें जाति व्यवस्था को उभारने की कोशिश करते थे, भड़काने की कोशिश करते थे। यहां आपको समझना होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप नेता के रूप में कुछ भी बोलते रहिए, आप कोशिश करते रहिए, सवाल यह है कि क्या जनता ने उसे स्वीकार किया। अगर जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही तो अगली बार आपकी जो भाषा है वो बदल चुकी होगी, राइट। दोस्तों, अभी कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। ये आंकड़े दिए हैं रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा। उस नमूना पंजीकरण प्रणाली में उसने जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के बारे में बात की है और मान करके चलिए कि जनगणना को छोड़ करके बाकी जो आंकड़े आते हैं उन्हें इस अधिकृत आंकड़े माना जाता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट सरकारी आंकड़े माना जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको केवल तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो यह है कि इसमें यह बताया गया है कि हमारी जो युवा आबादी है वह कम हुई है। 1971 में हमारी जो युवा आबादी थी वो 41.2% थी, जो अब गिरकर 25.3% हो गई है। और जब मैं युवा आबादी कह रहा हूं तो उसका मापदंड है 15 वर्ष से कम आयु के लोग, बच्चे आप कह लीजिए। इसके बाद दूसरा आंकड़ा है काम करने वाली आबादी, जो कामकाजी है, जो काम कर सकते हैं, यानी कि 15 वर्ष से ऊपर और 59 इयर्स के आसपास या 60 से कम कहना ज्यादा अच्छा होगा, इनकी संख्या बढ़ी है। 1971 में इनकी जो आबादी थी कुल आबादी का 53.4% था, जो अब बढ़कर 66.7% हो गया है। मैं 71 से इसलिए तुलना कर रहा हूं क्योंकि उसमें आपको एक लंबा गैप दिखाई देगा, अदरवाइज 1911 के भी आंकड़े हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। इसके बाद जो तीसरा है, चूंकि जो ओल्ड एज के जो सिटीजन्स होते हैं वो भी आपके सिलेबस में है तो आपको मालूम होना चाहिए, 2019 में इनकी आबादी बढ़कर 8% हो गई है, जो 1971 में 5.3% थी। ये आंकड़े आपके बहुत काम के होंगे क्योंकि कभी कभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों, न्याय मित्र के बारे में अभी एक न्यूज़ छपी है और उस न्यूज़ के तहत ये बताया गया है कि जो हमारे यहाँ जो न्यायालय हैं उनमें दुनिया भर के केसेस लंबित पड़े हुए, आप जानते हैं, अगर हम हायर जुडिशरी को छोड़ दें तो बाकी जुडिशरी में 4.17 करोड़ से अधिक केसेस, जिसे हम लोअर जुडिशरी कहते हैं, 4.17 करोड़ केसेस पेंडिंग है। उसमें कितने केसेस तो 10-10 साल पुराने हैं। अब इनका इलाज क्या है? तो उसके तहत बकायदे जो हमारा कानून मंत्रालय है उसने 2017 में राज्यों से कहा कि आप न्याय मित्रों की नियुक्ति कीजिए। न्याय मित्र, उनको ये काम दिया गया कि जो 10 साल से पुराने केस हैं, 10 साल से अधिक पुराने केस हैं, आप उनकी सुनवाई कीजिए और उसका जल्दी से निपटारा कर दीजिए। इन जो न्याय मित्रों की नियुक्ति होनी थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य सरकार के द्वारा होनी थी, और इनका जो खर्चा था वेतन वगैरह का वो राज्य सरकारों को उठाना था, और उसने ऐसे 200 पदों के लिए स्वीकृति दी थी, और इसके तहत आप रिटायर्ड जज को ही रख सकते थे। तो न्याय मित्र के बारे में तो इतनी ही बात है। लेकिन अफसोस देखिए कि 200 जजों के लिए कहा गया था, न्याय मित्रों के लिए, जिसमें से सिर्फ 27 लोगों की नियुक्ति हुई, सिर्फ 27, और जबकि केसेस इतने पेंडिंग हैं। अब एक जो जज होता है, संकट क्या है देखिए व्यावहारिक, एक जो जज होता है लोअर कोर्ट में उसको डेली 100 केसेस सुनने पड़ते हैं। अब वो 100 केसेस तो सुन नहीं पाएगा, आपको लगता है व्यावहारिक तौर पर सुन पाएगा? तो होता क्या है कि ठीक है, इसको अगली तारीख दे दो, अगली तारीख दे दो, अगली तारीख दे दो, तो 10-10 साल तक वो तारीख ही पड़ती रहती है। और अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो मान करके चलिए कि यह सच्चा लोकतंत्र नहीं है। तो न्याय मित्र के बारे में मैंने आपको ये बातें बताई, चूंकि जुडिशरी से जुड़ी हुई ये तथ्य हैं तो आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौर में जो कुछ भी हो रहा है आप सब देख रहे हैं, और एक अच्छी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में अब जो बातचीत हो रही है उससे थोड़ी संभावना बनी है कि शायद यह युद्ध विराम तक पहुंच जाए। यह मैं दो बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा भारत की दृष्टि से। पहली बात तो यह कि भारत और रूस के बीच में तेल के खरीदी की बातचीत चल रही है। रूस भारत को तेल देने को तैयार है, आप जानते हैं कि रूस पर अलग तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो सस्ती कीमत पर देने को तैयार है और बकायदे रुपए के बदले देने को तैयार है। रुपए के बदले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खासकर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो लेन देन होता है वो क्या होगा, डॉलर के टर्म्स में होता है। अब आपको मालूम है कि रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसे बकायदे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है, उसे बाहर कर दिया गया है। तो अब जो रूस है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन कर नहीं सकता है, तो उसे अपने देश की मुद्रा में लेन देन करना पड़ेगा। तो हमारी मुद्रा है रुपया और उसकी है रूबल, तो आप अपना सामान भेजिए और हम आपको रुपया में भुगतान कर देंगे। इसके लिए वो तैयार हो गया है और ये सस्ता भी पड़ेगा, तो भारत के लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बाहर आपको मालूम है क्रूड ऑयल के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं और भारत अपने क्रूड ऑयल का 85% आप सोचिए कि इम्पोर्ट करता है। ऐसे में हमारा राजकोषीय घाटा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा कल्पना हम कर सकते हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर ये है। दूसरा ये भी है कि जो गेहूं है, रूस सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात करता था, उसका निर्यात रुक गया है, भारत दूसरे स्थान पर था। हालांकि भारत गेहूं काफी उत्पादित करता है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट के लायक नहीं है। तो ये भी संभावना देखी जा रही है कि जो गेहूं का निर्यात है वो भारत से बढ़ सकता है और हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी खबर होगी। ये भी सुनने में आया कि कुछ किसानों से मेरी बात होती है, ठेले वालों से, कि धीरे धीरे बाजार में गेहूं का मूल्य बढ़ रहा है, तो ये संकेत दे रहा है कि हम शायद गेहूं निर्यात करने की स्थिति में आ जाए और अधिक मात्रा में। तो ये दो पॉजिटिव खबर है। एक इसी से जुड़ी खबर है कि अभी जो रूस ने यूक्रेन पर जो अटैक किया है उसके कारण 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी जो रूस में होनी थी अब वो रूस से छीन ली गई है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि अब यह प्रतियोगिता भारत में होगी, भारत के चेन्नई में होगी। खास कर चुकी एक बड़ी खबर है तो आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, आज के अखबार में अगर आपने ध्यान दिया हो तो कांग्रेस के कलह के बारे में एक बात आई है जो मैं स्पेशली यहां मेंशन करना चाहूंगा। इससे आपको लोकतंत्र का एक नया रूप दिखाई देगा। कांग्रेस में एक ग्रुप है जो बहुत असंतुष्ट है, वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है और क्या हश्र हो रहा है आप देख रहे हैं। इस पर हम लोगों ने बातें की थी। अभी जो असंतुष्ट गुट है उनकी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने एक दो बहुत वैल्यूएबल प्रश्न उठाए, बहुत ही अमूल्य किस्म के आप कह लीजिए कि प्रश्न उठाए, जो लोकतंत्र से जुड़े हुए भले ही उन्होंने अपनी पार्टी के संदर्भ में उठाए हों। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से और चेन्नई को बना दिया गया, यह निर्णय किसने लिया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। तो यह निर्णय सीधे सीधे नाम नहीं था, लेकिन यह कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया, जबकि उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय बकायदे कार्य समिति में लिया जाना चाहिए था। कार्य समिति में निर्णय लिए जाने का मतलब होता है कि सामूहिक निर्णय, और लोकतंत्र क्या है? सामूहिक निर्णय। संसद क्या है? सामूहिक निर्णय लेने का मंच। और अगर निर्णय लेने वाला केवल एक ही हो तो लोकतंत्र और राजतंत्र में फर्क क्या रह जाएगा? दूसरा भी प्रश्न उन्होंने उठाया कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो प्रियंका वाड्रा ने घोषणा कर दी कि 40% जो उम्मीदवार होंगे वो महिलाएं होंगे, और टिकट देने में उन्होंने ऐसा किया भी। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था ये। यह निर्णय भी कार्य समिति के द्वारा लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कैसे अकेले ये घोषणा कर दी और इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो यहां भी आपको एक व्यक्ति का निर्णय दिखाई दे रहा है, और यहां भी आपको राजतंत्र या एक तंत्र स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो ये ताजे तथ्य हैं जो प्रश्न उठाए गए हैं, आपकी जानकारी में होने चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य खबरें थी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर के मैं आप सबसे बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं है, लेकिन हम लोग इस विषय पर हो सका तो आगे चल करके बात करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं, उसके लिए आसिफ खान, जिनका गांव है सीजावाटा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से उन्होंने एडमिशन लिया है। तो आसिफ खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब 3 दिनों के लिए इस डेली ऑडियो लेक्चर को विराम देने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। होली की शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे अनुमति दें। नमस्कार।